الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم اپنے حضرت بی ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کی کتاب مثالی برد میں سے پڑھتے ہیں، اور سارے عنوان الحمدللہ مکمل کر کے آخری عنوان پر ہم ہیں، یعنی مثالی شاگرد، ایگزیمپلری اسٹوڈنٹ. صحیح انگریزی میں اس کا شاید یہی ترجمہ بنے گا. تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو پڑھنا شروع کر لیا تھا، اور حضرت نے اس میں علم کی اہمیت کے موضوع سے بات شروع کری تھی کہ العلم نور، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم روشنی ہے، اور نور والی روشنی یعنی جس کے اندر ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہوتا ہے، نور، ٹھیک ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، ضیاء السماوات والارض نہیں فرمایا، نور السماوات والارض فرمایا، ٹھیک ہے. تو علم کے اندر ایک یعنی ایک تو ظاہری ایسپیکٹ ہوتا ہے علم کا، کہ آپ کو ظاہری طور پہ بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ نالج، سو کال انگریزی میں تو اس کو نالج ہی کہیں گے، انفارمیشن بڑھتی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک انٹرنل ایسپیکٹ ہے جو کہ اندر سے انسان کو روشن کرتا ہے یا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کر رہا ہے تو پھر یہ علم نافع کہلاتا ہے. اگر اندر کو بھی اگر اندر کو بھی روشن کر رہا ہے، یعنی انسان کا باطن بھی سنور رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے ظلمت اور یعنی جہالت کی ظلمت، ٹھیک ہے، بد اخلاقی کی ظلمت، اندھیرا اس کے اندر سے دور ہو رہا ہے، تب یہ کہلائے گا علم نافع. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، صرف ظاہری طور پر انفارمیشن بڑھ رہی ہے وغیرہ، تو یہ علم نافع نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر کافی ساری بات جو ہے وہ پچھلے ہفتے یہی سب ہوتی رہی تھی کہ بھئی ہمارے دین نے تو جس علم کی بات کری ہے وہ تو وہ علم ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑھے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا استحضار بڑھے، اللہ تعالیٰ کا کہ ناراضگی کا خوف بڑھے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے، کیونکہ عظمت جب کسی کی ہوتی ہے اسی سے انسان جو ہے نا پھر یعنی اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر عظمت نہ ہو کسی کے دل کے اندر تو اس کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کے ساتھ تو میں کرتا ہے. اس کی ایک یہ عاجز جو ہے وہ اپنے لڑکپن کی، جب ہم نے پہلی جاب کری تھی تو اس زمانے کا ایک، کبھی الحمدللہ ہوا ایسا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب کبھی یہ والی بات کرتے ہیں نا تو وہی والا پارکنگ لاٹ آ جاتا ہے ذہن میں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ وہاں پہ کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. ہاں یہ ہوا تھا، یہ میں نے پہلی جاب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پاکستان کے اندر شروع کری تھی. تو وہاں پر CEO بھی صاحب آتے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی پارک کر رہے ہوتے تھے، اور مینیجرز بھی ہوتے تھے، اور وائس پریزیڈنٹس بھی ہوتے تھے، اور ہم بھی اسی پارکنگ لاٹ کے اندر پارک کر رہے ہوتے تھے. تو پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ ایک خاکہ سا بنا ہوا ہے کہ جیسے پہلے دن آپ کی جاب کی ہو، آپ وہاں پہ گئے ہوں، تو اگر آپ کی جو ہے نا وہ کسی کے گاڑی سے ٹکر ہو گئی ہو تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر اگر لڑائی شروع کر دی، او تم نے میری گاڑی مار دی، دیکھ کے نہیں چلاتے، تمیز نہیں ہے، یہ وہ کرنا شروع کر دیا آپ نے، اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کر دی، جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ہے، وہاں پر نجم تو ہوتی نہیں ہے کہ اس کو آپ کال کر لیں اور سارا مسئلہ حل ہو جائے، تو آپس میں ہی پھر لوگ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خوب اس قسم کی حرکتیں کر لیں. اب جب اوپر گئے نا یہ صاحب جن کا فرسٹ ڈے ایٹ جاب تھا، تو اوپر جا کر کے جو ہے نا وہ ان کو جب جو ہے وہ مینیجر کے کمرے میں بلایا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مینیجر کی سیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ وہی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ یہ بدتمیزی کر کے آئے، ٹھیک ہے. अब इनके जो है ना पैरों तले जमीन निकल गई, इनके जो है ना वो आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इनके सर के अंदर चक्कर आने शुरू हो गए कि आज मेरा नौकरी का पहला दिन और मैंने जो है ना वो अपने ही मैनेजर साहब के साथ जो है ना वो क्या हरकत कर दी है ना। अब जो है वो अंदर ही अंदर भी परेशान हो रहा है, ऊपर से भी माफी तलाफी कर रहा है और निगाहें जो है वो इसकी शर्म से उठ नहीं रही हैं। क्यों भाई, इतना बड़ा फर्क क्यों आ गया आपके बिहेवियर के अंदर? यही इंसान था ना जिसके साथ आपने बदतमीजी करी थी, लड़ाई किया था, लड़ाई दंगा किया था, अब वही इंसान बैठा हुआ है, वही चार यानी दो हाथ दो टांगे, दो टांगे और वही दो आंखें, वही चेहरा, वही मोहरा, सब कुछ, क्योंकि अब उसकी अजमत आपके सामने खुल गई है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये आपका अपना मैनेजर है। पहचान गए अब आप इसकी अजमत को, इसकी बड़ाई आपके सामने खुल गई, इसकी इंपॉर्टेंस आपके कैरियर के अंदर खुल गई आपके सामने। अब जो है ना आप उसके साथ बदतमीजी का सोच भी नहीं सकते। हम अल्लाह ताला के साथ क्यों बदतमीजी करते फिरते हैं? अल्लाह के हुक्मों को जो है वो सबसे कमतर, बल्कि शायद उतना भी नहीं जानते, और दूसरों के हुक्मों को अल्लाह ताला के हुक्मों के ऊपर फौकियत देते हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर दूसरों के तरीकों को फौकियत देते हैं, हर चीज क्यों कर रहे होते हैं? हमारे सामने अल्लाह की अजमत नहीं है, हमारे सामने अल्लाह की अजमत बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से हम ये सारे काम करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, बड़े जो है ना अपना हक समझ करके करते हैं, जैसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यानी अल्लाह कुछ नहीं कर सकता हमारा, अल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर लो जो भी करना है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि खशियत नाम की भी नहीं है हमारे अंदर। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद क्या फरमाते हैं इनके बारे में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, राइट, कि जो उलमा होते हैं ना वही तो अल्लाह ताला से खशियत रखते हैं, इल्म रखने वाले, ठीक है ना? तो आपने और हमने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो है वो न जाने और किस किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग्स और जो है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स और न जाने घर घर के अंदर ट्रेनिंग्स और फलानी ट्रेनिंग्स, इतना इल्म हासिल कर लिया, खशियत बड़ी अल्लाह ताला की, कोई गुनाह छूटा इस इल्म को हासिल करने के बाद, कोई अजमत पैदा हुई दीन इस्लाम की, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की, और कोई जो है वो यानी दिल के अंदर नफरत और दिल के अंदर कमतरी पैदा हुई नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दुश्मनों की सुन्नतों की, क्या हुई? हुई तो ये इल्म नाफे था, और जाहिर नहीं हुई, इस इल्म को हासिल करके किसी के अंदर ये सब कुछ पैदा नहीं हुआ, तो ये इल्म कैसे नाफे हो सकता है? चाहे जो है ना वो मौलवी साहब बोले कि हाँ बहुत जरूरी है, चाहे जो है वो कोई दूसरे साहब बोले कि हाँ बहुत जरूरी है, नाफे तो नहीं हो सकता ना ये। या तो आप नाउज बिल्ला बदलने की कोशिश करें कुरान मजीद के फैसलों को, कुरान मजीद के ऐलानात को, ठीक है, तो ये इल्म नाफे नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि दुनिया के जो सनत होती है और दुनिया के जो 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 फनून होते हैं उनका इल्म जो है वो नाफे बन नहीं सकता। ऑफ कोर्स बन सकता है, हम बनाते नहीं है ना, क्योंकि हमने जो इल्म हासिल करना है वो तो हमने काफिरों के निजाम से हासिल किया है, राइट, वो तो हमने काफिरों के बनाए हुए सारे के सारे तौर तरीके और काफिरों के बनाए हुए असातिज़ा कराम, जिनको काफिरों ने बनाया, जिनके जहन काफिरों ने बनाए, उन असातिज़ा से जो है वो इल्म हासिल कर रहे होते हैं, उन किताबों से इल्म हासिल कर रहे होते हैं जो कि काफिरों की बनाई हुई किताबें हैं, राइट, और जो है वो काफिरों के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस उनसे इल्म हासिल कर रहे होते हैं। तो फिर वही इल्म जो कि हमारे लिए नाफे बन सकता था, साइंस का इल्म, टेक्नोलॉजी का इल्म, लैंग्वेजेस का इल्म, ज्योग्राफी का इल्म, हिस्ट्री का इल्म, ये सब का सब नाफे बन सकता था, लेकिन इस तरीके से तो नहीं बन सकता ना, इस तरीके से तो नाफे नहीं बन सकता ना, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना वो आज, ये तो समझने की ये समरी हो गई पिछली क्लास की भी, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी चीज अगर हम समझ जाए, काश के हम समझ जाए, बहुत ही आसान सी बिल्कुल बेसिक बात है, वो क्या है कि जो मुसलमान होता है ना ईमान वाला, उसकी जिंदगी तो होती है सूरह असर के हिसाब से, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, और इसमें जो मशहूर तरीन तफसीर है, मकबूल तरीन तफसीर, वो क्या है, वक्त की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला, सिर्फ असर के वक्त की कसम नहीं खा रहे बल्कि जमाने की यानी वक्त की कसम खा रहे हैं, कि वक्त जो है ना ये मोमिन का जो है ना यही सरमाया होता है, इस सरमाए को जो है ना वो जाया नहीं होने दे सकता, एक एक लम्हा उसकी जिंदगी का कीमती है, इसी लम्हे के अंदर रह करके तो उसने आखिरत कमानी है, अल्लाह को राजी करना है, तो उसका एक लम्हा भी अगर जाया हो जाता है तो ये उसके लिए लॉस है, जैसे कि बर्फ बेचने वाले का, राइट? बर्फ बेचने वाला जो है ना, वो अपनी बर्फ को आम जो ठेले के ऊपर बेचते हैं ना, वो बर्फ को सेव नहीं कर सकते, या तो बेचें और मुनाफा कमाएं या बर्फ पिघल के खत्म हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी के औकात हैं, या तो हम हर वक्त के अंदर मुनाफा कमाएं या वो गुजर करके खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस वजह से जो ईमान वाला होता है ना, वो तो अपने हर लम्हे ताजर होता है, हर लम्हे वो तिजारत कर रहा होता है, एक एक लम्हे से वो अल्लाह ताले की रजा को कमाने की फिक्र में लगा होता है। तो इस वजह से ईमान वाले के लिए एवरी मोमेंट नीड्स ए डिसीशन मेकिंग, एवरी एक्शन नीड्स ए डिसीशन, क्या ये एक्शन मेरे लिए फायदेमंद है या ये मेरे लिए नुकसानदेह है, क्या जो मैं इस वक्त बैठा हुआ कर रहा हूं या कुछ भी नहीं कर रहा हूं बजाहिर, तो क्या मैं कोई मुनाफा कमा रहा हूं, क्या मैं अल्लाह की याद कर रहा हूं, क्या मैं कोई तदब्बुर कर रहा हूं, क्या मैं तफक्कुर कर रहा हूं, अगर कोई जाहिरी तौर पर एक्शन नहीं कर रहा, पैर से एक्शन नहीं कर रहा, तो मेरा जहन कोई तदब्बुर तफक्कुर कर रहा है या मैं जाया कर रहा हूं, ठीक है ना? तो ईमान वाले की तो ये जिंदगी है, इसी को हमारी शरीयत में कहा गया कि बुराई को अपने से दूर करना, एवरी मोमेंट ही इज वरीड कि बुराई मेरे करीब तो नहीं आ रही, मैं उसको दूर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और इसको कहते हैं दफ़ई मुज़र्रा, दफा करना जरर पहुंचाने वाली चीजों को, दफा करना दूर करना, और जल्बे मनफात नफा पहुंचाने वाली चीज को एक्वायर करना, जज्ब करना, अपने पास करीब करना, हर लम्हे उसकी यही फिक्र होती है, क्या मैं दफ़े मुजरत कर रहा हूं और जल्बे मनफात कर रहा हूं या नहीं कर रहा, हर चीज में वो यही देखता है, दफ़े मुजरत हो रही है या नहीं हो रही है, जल्बे मनफात हो रही है या नहीं हो रही है। ईमान वाले की हर चीज इन दो क्राइटेरिया के ऊपर होती है, तो ये कैसे हो सकता है कि इल्म जो वो हासिल कर रहा है, इल्म जो वो हासिल कर रही है, या अपनी औलादों को वो इल्म दे रही है या दिलवा रही है या दिलवा रहा है, उसमें वो ये इन चीजों को नहीं देख रहा हो कि दफे मुजरत हो रही है, जल्द में मनफत हो रही है या नहीं हो रही है, बस ऐसे ही भेड़ चाल चल रहा है, राइट? बिकॉज समवन एल्स वॉज डूइंग इट, एंड हु इज दैट समवन एल्स इज, कोई नेक परहेजगार आखरत का खरीदार नहीं है, बल्कि जस्ट एनी वन, जस्ट बिकॉज द होल सोसाइटी इज डूइंग इट, जानता है कि सोसाइटी के अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं और नजासतें ही नजासत हैं, गुनाह ही गुनाह है, जुल्म ही जुल्म है, अपनी जुबान से बार बार इस बात का इकरार करता है और इजहार भी करता है, लेकिन सोसाइटी जिस रास्ते पे चल रही है वो उसी रास्ते पे चल रहा होता है। सब लोग अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में भेजते हैं तो ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, और ही जस्ट इट्स एन अजम्पशन, बस ये इसका गुमान है, बस मुझे इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव पैथ्स हैं, कोई मुतबादल रास्ते हैं, उनको मैं एक्सप्लोर करूं अपनी औलाद की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, नहीं, बस भेड़ चाल मुआशरा चल रहा है, बस मैंने भी चलना है उसी में, जो है वो तगुदो कि किस तरीके से इस चाल में जो कि जहालत की तरफ जो भाग रहे हैं सारे के सारे स्कूलों के जरिए से, मैं उस दौड़ में उनसे आगे निकल जाऊं, मेरे बच्चे उस दौड़ में उनसे आगे निकल जाएं दूसरों के बच्चों से, बस ये इसकी फिक्र है, राइट? इस बात की इसको फिक्र है, और अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक क्या चीज दफे मुजरत होती है, क्या चीज जल्द में मनफात होती है, इसकी इसको कोई परवाह नहीं है, और बजाहिर जो है वो दाढ़ी भी रखी हुई है और जो है वो नमाजें भी पढ़ता है और मस्जिदों के दौड़ भी लगाता है, और खवातीन खातून साहिबा जो है उन्होंने बुरका भी पहना हुआ है, अभी पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी ना कि बुरका पहनी खातून जो है ना वो अपनी बेटी को सेंटा क्लॉज का लिबास पहना करके स्कूल लेकर के जा रही है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो है ना वो क्रिसमस मनाई जा रही है और बच्चों ने जो है ना वो सेंटा क्लॉज का लिबास पहन के आना है। गालिबन कराची की वो तस्वीर थी, कोई यूरोप अमेरिका की तस्वीर भी नहीं थी कि बुरके वाली खातून मजबूरन ऐसा कर रही होंगी, वहां भी कोई मजबूरी तो नहीं होती है लेकिन कराची में कहां सी मजबूरी आ गई भाई। तो कोई मॉड स्क्वाड किस्म की खातून होती तो फिर समझ में आता ना कि हाँ भाई इनको तो वैसे ही किसी चीज की फिक्र नहीं है, तो ये अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज पहनाए या पता नहीं कौन सा क्लॉज पहनाए, लेकिन बुर्का भी पहनी हुई है और साथ साथ जो है ना वो इल्म के बारे में और तालीम के बारे में इस किस्म का इनका रवैया है कि बस चूंकि इस हमें बस यही नजर आता है, बस जो स्कूल है तो स्कूल के अलावा तो कोई सोच ही नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते, राइट। खाने पीने से ज्यादा अहम जो है वो स्कूल की तालीम है, मर जाएंगे लेकिन स्कूल की तालीम के लिए जो है ना वो कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर के जो है वो स्कूल की तालीम दिलवाएंगे, और वही वाले स्कूल जिनके अंदर जो है वो उनको जहन्नुम के रास्ते पर डाला जा रहा होता है। इसी वजह से ये आजिज अक्सर कहता है कि हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना वो सारे बिजनेस फेल हो सकते हैं, हत्ता के खाने पीने के बिजनेस भी फेल हो जाते हैं, ज्यादा नहीं होते फेल लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं, लेकिन ये स्कूलों का बिजनेस कभी फेल नहीं होता। जहां भी आप चाहे स्कूल खोलें, चाहे अपना प्राइवेट घर के अंदर खोलें, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें, चाहे आप जो है वो कुछ करना शुरू कर दें, या आप कोई बड़ा स्कूल खरीद के खोल लें, नाकाम नहीं हो सकता, वो बढ़ेगा। एक के बाद जो है ना वो दूसरा आपकी ब्रांच खुलेगी, दूसरे के बाद आपकी तीसरी ब्रांच खुलेगी। क्यों? इसलिए कि इसके बगैर लोग जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। पहले एक जमाना था लोग रोते थे जी हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं, यूनिवर्सिटियां नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो जमाना गुजर गया, वो जमाना गुजर गया, अब नया जमाना आ चुका है। अब जितनी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में है ना उनकी कोई काउंट नहीं कर सकता उनको, लेकिन वो यूनिवर्सिटियां के इल्म नाफे इम्पार्ट कर रही हैं या इल्म गौर इम्पार्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, ये हमने इसकी फिक्र ही कोई नहीं किसी को, ठीक है। तो बहुत सादा और आसान सा है भाई कि भाई अब आप अगर मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं तो कम से कम दीन की बुनियाद को तो समझे ना, और उसके मुताबिक कुछ डिसीशंस तो लिया करें कि भाई इसके अंदर फायदा हो रहा है, इसके अंदर नुकसान हो रहा है, हर चीज में भी दूसरी चीजों में देख लेंगे लेकिन इल्म के अंदर नहीं देखेंगे, जिससे कि इंसान का जहन बनता है, इंसान का दिल बनता है और इसकी दुनिया को देखने का जो नजर बनती है सारा का सारा इस इल्म की बुनियाद पे बनता है, ठीक है। हत्ता के इंसान की अकल जो फैसले करती है वो फैसले अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, आजाद नहीं होती इंसान की अकल। अल्लाह ताला ने इंसान की अकल को इख्तियार जरूर दिया है कि वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे कि वो बुराई का रास्ता इख्तियार करे, लेकिन वो जो इख्तियार करता है ना ये इख्तियार इंडिपेंडेंटली नहीं करता। ये हमारा गलत नजरिया है, हमारी गलत सोच है कि जी हम तो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर जो है ना वो हम फैसला कर रहे हैं, हमारी अकल जो है वो आजाद है और बगैर लोगों के एक्सटर्नल प्रेशर्स के जो है ना वो हम अपने हिसाब से फैसला करते हैं, जो हमारे जो हमें सही लगता है वही फैसला करते हैं। हालांकि हमें क्या सही लग रहा होता है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्सेस, अवामिल के ऊपर। अवामिल और नहु, जो नहव पढ़ चुके हैं वो जानते हैं अवामिल क्या चीज होती है, एक्टर्स, राइट। सोशल मीडिया के अंदर बकायदा इसके लिए क्या टर्म्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया को भी आजाद समझा हुआ है, राइट, सोशल मीडिया को भी आजाद समझा हुआ है, हालांकि सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेंड्स को। इट्स अ नोन फैक्ट, लोगों के सोचने के ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंसर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं खास तरीका का ट्रेंड। सिर्फ सोशल वो ये ट्विटर के ऊपर नहीं होता ट्रेंड्स, पूरा सोशल मीडिया हर किस्म की चीज। आवर इंटेलेक्ट इज अंडर इन्फ्लुएंस, नो वन इज इंडिपेंडेंट, राइट। ये तो हम समझ रहे हैं ना हम इंडिपेंडेंट हैं या फलानी हमारी बेगम साहब इंडिपेंडेंट हैं या फलानी साहब इंडिपेंडेंट हैं, नो वन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट द ओनली डिफरेंस इज कि समवन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिव फोर्सेस, राइट, अल्लाह और उसके रसूल जो कि ईमान वाले के नजदीक वही पॉजिटिव फोर्स है, दीन ईमान वाले के नजदीक वो पॉजिटिव फोर्स है, और जो दुनिया परस्त होता है उसके नजदीक जो दूसरी साइड की फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव फोर्स होती हैं। ठीक है ना। नो वन इज इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो भाई जिस माहौल मुआशरे के अंदर आप रहेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर जाएंगे, जिस माहौल के अंदर, जिस जिस सर्कल के अंदर आप रहेंगे, दैट सर्कल इन्फ्लुएंसेस यू, आपके ऊपर असर अंदाज होता है। अब हमारी चॉइस ये होती है कि हम नेक लोगों के सर्कल को एडॉप्ट करें, अपने आप को उसके अंदर शामिल करें, यानी नेक सोहबत अपनाएं, या हम जो है ना वो बुरी सोहबत अपनाएं, ये हमारा डिसीशन है। जब आपने कोई सोहबत अपना ली, बस अब उस सोहबत ने आपके सोच को, आपकी फिक्र को इन्फ्लुएंस करके लेकर चलना है, आपके बच्चे की फिक्र को, आपकी सोच को लेकर के, आपके बच्चे की सोच को लेकर के चलना है। हम समझते हैं नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो बात पता, भी तो मान लेंगे तो मानने वालों के लिए फायदा है, जो नहीं मानते उनके लिए मानने के बाद ही पता चल जाता है सब कुछ। तो इतनी सी बात है। अब जो है ना वो हम थोड़ा सा किताब से भी पढ़ लेते हैं कि अहादीस की रोशनी में तालिब इल्म का मकाम, राइट, कितनी अहमियत है, कि वही तो इतरा के ऊपर भी काफी सारी बात हो चुकी है पिछली क्लास के अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मा मिन खारिजिन यखरुजु मिन बैतिन फी तलब अलइल्म इल्ला वदअत लहु अलमलाइकतु अजनहतहा रिदन बिमा यस्ना, कि जो शख्स भी अपने घर से हुसूल इल्म के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके पांव तले अपने पर बिछाते हैं, क्योंकि वो उसकी तालिब इल्म से खुश होते हैं। ठीक है, तो अब फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, यानी ये क्या है, ये इल्म के हुसूल को जो है ना वो एलिवेट किया जा रहा है हमारे दीन के अंदर ना। लेकिन उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी कि नॉट एवरी काइंड ऑफ इल्म, बल्कि खशियत वाला इल्म, ठीक है ना, जो कि अल्लाह ताला की खशियत बढ़ाता हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इल्म क्यों ना हो, चाहे वो कुरान मजीद और हदीस का इल्म क्यों ना हो। क्योंकि जो उलमाए सू होते हैं, राइट, उलमाए सू जैसे यहूद, ठीक है, और जो है वो दूसरे अकवाम के जो उलमा हैं, या हमारी अकवाम के अंदर ही जो उलमाए सू बने हुए हैं मुसलमानों के दरमियान, वो कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, हदीस भी पढ़ रहे होते हैं, खूब सारा इल्म भी हासिल कर रहे होते हैं, सब कुछ जो उनके पास जाहिरी नॉलेज हो रही होती है, लेकिन खशियत अल्लाह ताला की नहीं बढ़ रही, बल्कि वो इस इल्म को जो है वो दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना, नाजायज फतवे दे रहे होते हैं, हराम चीजों को हलाल करार दे रहे होते हैं, और जो है ना वो गलत कामों को जो है वो जवाज का फतवा दे रहे होते हैं। तो इल्म बजाहिर उनके पास इल्म बहुत ज्यादा है कुरान मजीद और हदीस का, लेकिन वो उनके लिए खशियत बढ़ाने का सबब नहीं बन रहा, इसी वजह से वो उलमाए सू कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट कि इल्म सिर्फ वही फायदा मंद है जो कि खशियत अल्लाह ताला की पैदा करने वाला हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी और बेनिफिट एनालिसिस के साथ ये चीजें पता चलती हैं। आगे कहते हैं कि अब ये कोई अजीब बात नहीं है, हमने दुनिया में देखा है कि जो बड़े और इज्जत वाले लोग होते हैं, एयरपोर्ट्स पे उनके पाँव के नीचे रेड कारपेट सुर्ख कालीन बिछाया जाता है। अगर दुनिया रेड कारपेट बिछाती है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, ये मोहब्बत की बात है। फरिश्तों को तालिब इल्म से मोहब्बत ऐसी है कि उनका दिल चाहता है कि उसका पाँव जमीन पर ना पड़े, ठीक है, बल्कि हमारे परों के ऊपर पड़े। जैसे बाज जगह मोहब्बत की वजह से लोग अपने महबूब के आने पर फूलों की पत्तियां बिछा देते हैं, और कई जगहों पर तो इससे भी आगे काम होता है, फूलों की पत्तियों से भी आगे, बकौल शख्स यानी बकौल शायर के, ए बादे सबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं, हम तो अपनी पलकों को, अपनी आंखों को उनके रास्ते में रख देंगे। जाहिर एक शायराना तखयल है, कोई भी नहीं रख सकता अपनी पलकों को, लेकिन इतना ज्यादा मोहब्बत, इतनी ज्यादा, तो ये जो जमीन के पैरों के नीचे बिछाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मोहब्बत के साथ होता है। तो आने वाले मेहमान की मोहब्बत की वजह से इंसान पलकें बिछाता है। इसी तरह जो लोग अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो फरिश्ते उनके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं, ये उस तालिब इल्म का एहतराम है जो तलब इल्म के लिए अपने घर से निकला है। ठीक है, अब इसके अंदर कुरान मजीद का इल्म हो सबसे पहले, क्योंकि सबसे अफजल इल्म जो है वो अल्लाह के कलाम का इल्म है, जैसे अल्लाह ताला जो है वो सारे मुलूक का मालिक है, उसी तरीके से जो कलामुल मलिक है वो भी मलिकुल कलाम है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हदीस मुबारक, फिर नबी अलैहिस्सलाम की बारी आती है, वो उसके बाद, लेकिन अगर इस नीयत से कोई इंसान जो है वो कोई मुसलमान किसी दुनियावी इल्म को हासिल करने जा रहे हैं ताकि मुझे अल्लाह ताला की खशियत हासिल हो जाए, ठीक है ना, तो वो भी यकीनन जो है वो इस मोहब्बत से महरूम नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी नीयत जो है वो अल्लाह के दीन की अजमत ही है, अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही है, अल्लाह की रजा की खातिर। एक और हदीस मुबारका में है कि मन कान फी तलब इल्म कानत अल जन्नत फी तलब ही, कि जो शख्स इल्म की तलब में होता है जन्नत उसकी तलब में होती है, यानी इंतजार में होती है कि जब अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे और ये दुनिया से जान छुड़ा करके आएगा ना तो मैं इसका इस्तकबाल करूंगी। जन्नत की ख्वाहिश करती है, काश ये बंदा मेरे मेरे अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने इल्म को क्या मुकाम अता फरमाया है। उलमा सितारों की मानिंद हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसलल उलमाए फिल अर्दी कमसलिन नुजूम फिस समाई, कि जिस तरह आसमान की जीनत सितारों से है इसी तरह जमीन की जीनत उलमा से है। ठीक है, तो जुहला से जो है ना वो जमीन की जीनत नहीं होती, उलमा से जमीन की जीनत होती है, और सितारे जो है वो आसमान के लिए कितना जगमगाते हुए कितना खूबसूरत लगता है, अगर आप किसी डार्क जगह पे चले जाएं और आसमान को देखें उस सितारों से उसकी क्या उसकी शान होती है, यानी जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं ऐसे ही उलमा अहले आसमान के लिए जमीन के सितारों की मानिंद चमकते हैं, क्योंकि इनके सीने के अंदर नूर होता है और इस नूर को जो है ना रूहानी मखलूक देख सकती है, क्योंकि ये रूहानी नूर होता है, ये कोई अंदर बल्ब नहीं जल रहा होता जिसको कहते जिस्मानी मखलूक देखे, ठीक है, तो ऊपर से वो देख रहे होते हैं नीचे से जो है उनको उनके सीने चमकते हुए नजर आते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना, कि जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पे चलता है अल्लाह उसके बदले उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देते हैं। ठीक है, तो तालिब इल्म ने इल्म की तलब में सफर किया तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। सुभान अल्लाह। कोई सवाल हो या आपको कोई कमेंट हो तो चैट विंडो हाजिर है आपके सामने, उस पर लिख करके आप बता सकते हैं। इस्लाम का पहला मदरसा और उसके मिसाली तलबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुद इल्म सिखाया। मदीना तैयबा पहुंच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदरसे की बुनियाद रखी। इस मदरसे का कोई नाम नहीं था, ठीक है ना, यानी बड़ा फॉर्मल मदरसा जो है ना वो मदीना तैयबा जाकर के कायम किया गया। इनफॉर्मल मदरसा जो था जो जिसके अंदर छुप करके तालीम दी जाती थी वो मक्का मुकरमा के अंदर भी कायम था, ठीक है ना। एक तो नबी अलैहिस्सलाम चलते फिरते मदरसे थे, चलती फिरती खानकाह थे, और एक जो है वो छोटा सा एक बाकायदा घर भी था दार अरकम, जिसमें के सहाबे कराम नबी अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठे होते थे और वहां पर जो जरूरी इल्म होता था चाहे वो इबादत से मुतालिक हो चाहे और मसाइल से, वो दार अरकम के अंदर सहाबे कराम हासिल किया करते थे, लेकिन वो छुपा हुआ था क्योंकि वो जमाना जो था मक्की दौर वो बड़ी परेशानियों और आजमाइश का तकालीफ का जमाना था। ठीक है, उस मदरसे से जो है ना वो सबसे पहली जो पौध निकली है मुसलमान उलमा की वो तो वहां से निकली है दार अरकम से, और फिर मदीना तैयबा आकर के ये बाकायदा अल्लाह ताला ने फिर रियासत अता फरमाई और साजगार माहौल अता फरमाया। तो आते के साथ ही सबसे पहले मस्जिद और मस्जिद के अंदर ही मदरसा असार सुफा वाला। तो इस मदरसे का कोई नाम नहीं था, उसके तलबा मुहाजिरीन थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे और वो सारा दिन पढ़ने के लिए हाजिर थे। ये इकामती मदरसा था यानी बोर्डिंग हाउस था ये, राइट, 24 आवर्स का इकामती मदरसा इसको कहते हैं, बोर्डिंग हाउस जैसे अंग्रेजी में जिसको कहते हैं यानी बोर्डिंग स्कूल वगैरह, और इसमें 70 के करीब तलबा थे जो वहीं रहते थे। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि 70 मिनिमम नंबर होता था और 400 जो है ना इसका मैक्सिमम नंबर जो एट वन टाइम रीच हुआ था, 400 तुलबा, ठीक है ना। तो 70 से लेके 400 के दरमियान जो है ना ये तुलबा उसके अंदर रहते थे, कभी ज्यादा हो गए कभी थोड़े फिर कम हो गए फिर ज्यादा हो गए, इस तरह से ये चलता रहता था। ठीक है, बाकायदा एडमिशन वगैरह का सिस्टम नहीं था, बस आप मुसलमान हो गए आप जो है वो आकर के यहाँ पर कायम करना चाहें तो आपको वहां पे कायम करने की इजाजत दे दी जाती थी। उनका खाना पीना भी वही था और वहीं पर वो इल्म हासिल किया करते थे। लेकिन अजीब बात है कि उस मदरसे का ना कोई तबाख यानी खाना पकाने वाला था और ना ही कोई मतबख, जहां पे खाना पकता हो उसको मतबख कहते हैं, किचन। बस अल्लाह पे तवक्कुल था, खाना अल्लाह ताला भेज देते तो ये लोग खा लेते थे, वरना इनको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। वहां पे ना खजूरों के तनों से पिलर्स बनाए गए थे मस्जिद नबी के अंदर, तो नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से ना दो पिलर्स के दरमियान जो है वो रस्सी तान दी गई थी, ठीक है, और उस रस्सी के ऊपर जो है ना वो लोग अपने बागों से जो खजूरों के गुच्छे होते थे ना, तो वो किसी के पास होता था कि अच्छा भाई ये एक्स्ट्रा खजूरें हैं और ये जो है ना वो मैं सदका कर सकता हूँ, या एक्स्ट्रा नहीं भी हैं लेकिन चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो वो ला करके अपने खजूरों के गुच्छे को जो है ना उस रस्सी के ऊपर टांग देते थे, ठीक है ना। तो वो रस्सी थोड़ी सी ऊंची भी थी, तो नीचे से जो है ना वो लोग जाहिर है जो बहुत लो हैंगिंग होते होंगे तो उसको तो वो हाथ से तोड़ लेते होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ के जो 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 खजूर होते थे उनको अपनी लाठियों से छड़ियों से मार मार के जो है ना गिराते थे और उसको खाते थे। ये उन लोगों का जो था ना वो खाने पीने का इंतजाम था, किचन कोई नहीं था इनका, ठीक है, या घर से कोई पका करके अगर खाना भेज दिया करता था तो उसके ऊपर गुजारा हो जाया करता था। लेकिन 70 है कभी 400 है, तो भाई 400 बंदों को खाना खिलाना तो वो कोई आसान काम तो नहीं, और इंसान को तो दिन में कम से कम दो दो दफा तो भूख लगती है, ठीक है ना, कम से कम सुबह का नाश्ता और रात का खाना, दिन को चले दिन के डिनर वो लंच को स्किप भी कर दे फिर भी दो वक्त, और इतने सारे लोगों को मदीना तैयबा, कितना छोटा सा छोटी सी जगह थी ना, जितनी मस्जिद नबवी है आज की उतना टोटल वो मदीना तैयबा का शहर था, बाकी जो इलाके हैं वो मदीना तैयबा से बाहर के थे, ठीक है ना, जैसे कुबा है वो अलग जगह थी, वो मदीना तैयबा नहीं था, और बनू सुलैम का इलाका है और पता नहीं कौन कौन से दूसरे इलाके, वो बिल्कुल अलग जगह थे, उतना दूर से कोई थोड़ी खाना कोई लेकर के आएगा, उस जमाने में कोई मोटरसाइकिल या कोई ट्रक वगैरह कोई थोड़ी होता था, तो बस अल्लाह पे तवक्कुल था, खाना अल्लाह भेज रहे थे तो ये लोग खा लेते थे, वरना उनको कई दिन भूखा रहना पड़ता था। क्या लिखा आपने कि जो ऑनलाइन इल्म हासिल करते हैं उनके लिए भी वही फजीलत है जो आपने अभी पढ़ा था फरिश्ते पर फैलाने वाली हदीस, जो ऑनलाइन हासिल इल्म हासिल करते हैं। हाँ हम भी तो चैट विंडो के ऊपर माशाल्लाह उंगलियां चला रहे होते हैं, हमारी उंगलियों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे होते हैं कुछ, अल्लाह ताला करवा दे, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, ठीक है। तो तौर तरीके तो तब्दील होते रहते हैं, अब पहले जो है वो पाँव से चल के जाते थे, फिर उसके बाद जो है वो साइकिल पे बैठ करके जाना शुरू हो गए, फिर उसके बाद जो है गाड़ी पे चल के जाना शुरू हो गए, तो भाई हर लिहाज से जो है वो बहरहाल इल्म के लिए कोई सफर तय कर रहे हैं। अब हम लोग जो है वो अपने ड्राइंग रूम से लेकर के या अपने बेडरूम से जो है वो ड्राइंग रूम का सफर तय कर रहे हैं, जूम को लॉग इन कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आसानी कर दी है, तो उम्मीद तो यही है कि हम कमजोरों के लिए अल्लाह ताला जो है ना वो सवाब का मामला वैसे ही रखे होंगे, क्योंकि हमें तो जितना कमी है ना सवाब की उतनी तो शायद कभी किसी को इतनी कमी नहीं रही होगी। अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर, अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही करता हूँ जैसा कि मेरे साथ गुमान रखता है, तो हम क्यों गुमान करें कि हमारे साथ अल्लाह ताला जो है ना वो कम सवाब देंगे, अल्लाह से गुमान करना है, अच्छे गुमान करें, ठीक है ना, नीयत जो है वो खालिसतन अल्लाह की रजा और जन्नत की जजा होनी चाहिए बस। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं इस कदर भूखा रहता था कि खड़ा नहीं हो पाता था, खड़ा होता तो बेहोश होकर नीचे गिर जाता था, लोग समझते थे कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है, लेकिन मुझे मिर्गी का दौरा नहीं होता था बल्कि भूख की वजह से ऐसा होता था, ठीक है, आज तो हमने भूख देखी ही नहीं चखी ही नहीं कभी, रोजा भी रखते हैं तो डकारें आती हैं रोजे के अंदर, अल्लाह की शान देखें कि इतना भूखा रहना पड़ता था जिसकी वजह से गश खा के गिर जाया करते थे, मगर जो इस मदरसे के तुलबा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन, और सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन, अल्लाह को बड़े महबूब थे, इतने महबूब थे कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यद'ऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहा, कि और अपने आप को आप इस्तेकामत के साथ उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को इसलिए पुकारते हैं कि वो उसकी खुशनूदी के तलबगार है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर नाम लिखे हुए हैं ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने गालिबन बयान तो सुना होगा मिसाली शागिर्द वाला, लेकिन बहुत अरसा हो गया, ये हजरत ने एक्चुअली ये नाम दिए थे बयान के अंदर या जो है वो किताब प्रिंट करने वाले नहीं है ना ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि उम्मीद तौर पर अगर स्पीच के अंदर ब्रैकेट्स डाल दिए जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि कहने वाले ने नाम लिए नहीं थे बल्कि प्रिंट करने वाले जो है ना अपनी तरफ से इसके अंदर इंसर्ट किए, ठीक है। क्योंकि ये बात हजरत को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि ये जो लोग थे ना, ये जो हजरात थे, ये इकामती मदरसे के अंदर नहीं रहते थे, ठीक है ना। ये लोग जो थे इनके अपने अपने घर होते थे, जब मदीना तैयबा आए हैं तो सबके अपने अपने घर थे, ठीक है ना। इकामती मदरसे के अंदर तो वो लोग होते थे कि जिनके पास घर नहीं होता था, ठीक है। ये लोग जो थे ये अब पार्ट टाइमर्स थे, ये पार्ट टाइमर्स थे, ये भी रातों को आ जाया करते थे जब इनके पास फारिग टाइम होता था, उस वक्त यहाँ पे आ जाया करते थे, खुसूसन तहज्जुद के वक्त जैसे उठ करके इधर आ गए, राइट, और नमाजों के वक्त जो है यहाँ पे पहुंच गए। कुछ तो दूर भी रहते थे, जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा दूर दूर हो गए थे तो अपने साथी से जो है वो तय कर लिया था कि एक दिन तुम मस्जिद नबी जाओगे और एक दिन मैं मस्जिद नबी जाऊंगा, जो मेरे पीछे होगा वो तुम आकर के मुझे बताओगे, जो तुम्हारे पीछे होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, एक वक्त उनके ऊपर ऐसा भी आया था कि वो रोजाना मस्जिद नबी भी नहीं जा पाते, ठीक है ना, क्योंकि अपना काम कारोबार और घर बार जो है, बीवियां थी माशाल्लाह, बच्चे थे, तो उनके साथ ये लोग ज्यादा टाइम लगाते थे। लेकिन इनकी जो तरबियत मक्का मुकर्रमा में हो चुकी थी, उस वजह से जो है ना ये उस मुकाम पे पहुंचे हुए थे कि ये गोया के नबी अलैहिस्सलाम के राइट हैंड पर्सन बन चुके थे, ये टीचिंग असिस्टेंट्स बन चुके थे, टीएस जो होते हैं ना यूनिवर्सिटियों के अंदर, टीए, ठीक है। और इनमें से एक जो थे ना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कुदरतन इनका मामला तो था कि इनके पास तो अभी तक घर वगैरह हुआ भी नहीं था, या तो कुछ अरसे के बाद हुआ था जब इनकी शादी वगैरह हुई होगी, तो 350 साल तो गुजार करके आए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनके लिए जो है ना फिर हमारे हजरत मॉनिटर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो यानी वो क्लास के जो है ना वो मॉनिटर थे, गोया के सबसे सीनियर मोस्ट असहाबे सफा के स्टूडेंट जो थे वो यही थे, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनकी जो है ना बड़ी स्पेशल किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की मीटिंग्स हुआ करती थी। आयशा सिद्दीक अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मैंने किसी के साथ, किसी सहाबी से जो है ना, मुझे वो नहीं हुआ, क्या हसद तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या क्या एक लफ्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे शायर, यानी रश्क, रश्क भी नहीं बल्कि एक और है ना, हसद का लफ्ज सही है ना रश्क का लफ्ज सही है, बल्कि खास लफ्ज जो है ना वो, यानी किसी दूसरे सहाबी से मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो जो है ना वो हमारा टाइम ले जाते हैं, नहीं पता नहीं कि वो हमारा टाइम ले जाते हैं। लेकिन सलमान फारसी वो वाहिद थे कि जब जिनके साथ नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो इशा के बाद लंबी सिटिंग्स कर लिया करते थे, और इशा के बाद जो है ना वो टाइम जो है वो बीवियों का होता था, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो सलमान फारसी तरह ना आ जाए तो फिर बीवियों को अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि भाई हमारे महबूब और असल महबूब जो है वो दुनिया के, वो तो हमारे घर में है लेकिन सलमान फारसी तरह बैठे हुए उनके साथ, या नबी सलाम के साथ बैठे हुए, तो इतनी लंबी लंबी मीटिंग सलमान फारसी तरह के साथ, जाहिर रूहानियत के बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या कुछ उसके अंदर राज जो है वो अफशा किया करते होंगे नबी सलाम उसके अंदर। लेकिन डेफिनेटली आई हैव नो डाउट अबाउट दिस कि सलमान फारसी जो थे ना वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पर भी काम कर रहे होते थे असहाबे सुफा, और जो भी मदरसे का ऐसा होता है ना इंचार्ज, जैसे हमारे शेखुल हदीस साहब जो है वो हमारे हजरत के मदरसे के वो मोहतमिम है, तो हमने देखा है कि शेखुल हदीस साहब के साथ जो है ना वो हजरत जी बड़ा टाइम लगा रहे होते हैं, बिकॉज ही हैज टू मैनेज ऑल दी यानी एडमिनिस्ट्रेशन, मोहतमिम साहब जो होते हैं, प्रिंसिपल साहब जो होते हैं, उनको सब कुछ मैनेज करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सलमान फारसी दौरान का भी मामला था, तो ये लोग जो है वो जिक्र भी खूब किया करते थे मदरसे के अंदर बैठ करके, और इल्म भी हासिल किया करते थे। अगर हम फकत समझने की खातिर इसका तर्जुमा अपनी जुबान में करें तो यूं बनेगा कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को नत्थी रखिए, जोड़े रखिए, चिपकाए रखिए उन लोगों के साथ जो अल्लाह की रजा चाहते हैं और अल्लाह की याद में लगे रहते हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारिए। अल्लाह ताला सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, कोई आम बंदा देख करके खाली नहीं इंप्रेस होकर के ये बात कर रहा, उनका खालिक, उनका मालिक, उनके दिलों के राज को जानने वाला, वो उनके बारे में ये ऐलान सुना रहा है सारी दुनिया को कि ये जो है ना वो युरीदुना वजह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर ये काम कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा के दरमियान आकर बैठे और फरमाया, ये कैसे लोग हैं कि जिनके दरमियान बैठने के लिए अल्लाह ने मुझे वही भेजी है। ये अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे थे क्योंकि ये अल्लाह ताला से मुहब्बत करने वाले थे और अल्लाह ताला इनसे मुहब्बत करने वाला था, ठीक है। उम्मीद है कि आप हजरात व खवातीन उनके साथ जो है ना, वो साजिद ने एक छोटा सा एक राइट अप आर्टिकल वगैरह लिखा था यूनिवर्सिटीज के बारे में, स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स, ठीक है, कि जहनी तौर पर जो है ना वो उपूबत खाने हैं आज के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, जो कि जाहिर है काफिरों के बनाए हुए होते हैं, हम अपने मदारिस की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी यही पॉइंट समझाने की कोशिश करी थी कि भाई ऐसे तो हमारे बात ही नहीं समझ में आती ना, कि ये कैसे जो है ना वो हुकूमत खाने हो सकते हैं, इनके अंदर तो जो है ना वो साइंस और टेक्नोलॉजी और जो है वो लैंग्वेजेस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही होती है, जो कि बड़ा मुफीद किस्म का इल्म है, और इसको पढ़ करके हम जो है ना वो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, उसको चांद तारे लगा देंगे अपने मुल्क को, बल्कि हम जो है वो दीन की भी खिदमत करेंगे, राइट। हम इनके निजाम से पढ़ करके निकलेंगे और किसी खिदमत करेंगे, अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे। तो कोई कहे आकर के कि भाई कैसे अल्लाह के दीन की खिदमत करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि यहां से, तो बिल्कुल बात ही समझ में नहीं आती, बल्कि अड़ जाते हैं, बल्कि वो दुश्मन हो जाते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा के इस फकीर बेतदबीर के दिल में एक अजीब बात डाली, है ना, कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि सीधी तरीके से समझ में नहीं आती। होता ना कि घी जो है ना वो कभी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता, उसको टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ता है। तो उसी तरीके से ना अरबी के अंदर एक मकूला है, एक मुहावरा है, जो भी, कि कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो कि अपनी जिद से पहचानी जाती, ठीक है ना, तारिफु बे अवदादिहा, अल अशिया तारिफु बे अवदादिहा, अशिया कुछ ऐसी होती हैं, यानी हर शय तो ऐसी नहीं होती, कुछ चीजें सीधे तरीके से भी समझ में आ जाती हैं, या तो जिनको हम समझना चाहते हैं वो हमारे सीधे तरीके से समझ में आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं हमें सीधे तरीके से समझ में नहीं आती, जिद से समझ में आती है। तो हम इस तालीमी निजाम जिससे कि हम पल बढ़ करके निकल रहे हैं और हमारी नस्लें पल बढ़ करके निकल रही हैं, ठीक है ना, तो इसकी जिद को देखें, नबी अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ जो तालीमी निजाम था, अस्हाब सुफा वाला, ठीक है ना, उस तालीमी निजाम से पढ़ करके निकलने वालों के बारे में क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि जिसने वो निजाम बनाया था, अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनवाया था वो तालीमी निजाम, क्या कोई इमेजिन कर सकता है सिवाय सहाबा के दुश्मनों के। वो तो कहते ही है कि वो तो नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे सहाबा, नाउज बिल्ला, झूठे हैं, जाहिर मकार है, लेकिन क्या कोई सही अकीदे वाला मुसलमान आप में से कोई ये बात तस्वुर कर सकता है कि सहाबा जो हैं, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हो, नबी अलैहिस्सलाम के मदरसे से तालीम याफ्ता हो, वो नबी अलैहिस्सलाम से नाउज बिल्ला नफरत करने वाले हो, वो नबी अलैहिस्सलाम के जो मकसद जिंदगी था उसके खिलाफ जाकर के काम करने वाले हो, क्या कोई ये तस्वुर कर सकता है? नहीं, क्योंकि इस मदरसे का, इस निजाम का मकसद ही ये था कि अपने हम नवा लोग बनाए जाएं, जो कि इस दीन को जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद वो पूरी दुनिया में लेके आगे बढ़े, राइट, इस दीन की हिफाजत भी करें, इस दीन की अशाअत भी करें। और 100% ऐसे ही हुआ, नबी अलैहिस्सलाम का ये बनाया हुआ निजाम 100% कामयाब हुआ, ठीक है ना। तो क्या कॉमन सेंस की बात है कि भाई जो भी अपना मदरसा बनाता है वो उसका तो यही मकसद होता है, उसका मकसद ये कोई थोड़ी होता है कि बस जो है ना वो कमाना सीख जाए, ये लोग बस कमाना सीख जाए, दाल रोटी जो है ना उनको पकानी कमानी आ जाए और बस, उससे ज्यादा जो है कोई कोई मकसद नहीं है आपके तालीमी निजाम का, ठीक है ना। तो भाई तालीमी निजाम बनाने वाले का सबसे पहला मकसद ये होता है कि मैं जैसे माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, राइट, द वे आई व्यू द वर्ल्ड, जो मेरे नजदीक सही चीज है वो मैं अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफर करूं, जो मेरे नजदीक गलत बात है वो मैं अपने स्टूडेंट्स में वही डेफिनेशन ट्रांसफर करूं, उसके खिलाफ ना ट्रांसफर करूं, और ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो सोचना शुरू हो जाए, उल्टा मेरी जो है वो मेरी बिल्ली मुझे मियाँ करना शुरू हो जाए। अजीब मामला है कि हम काफिर काफिर भी कहते हैं, गैर मुस्लिम भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आकर के, बरतानवी राज ने आकर के जो है ना वो हमारी सारी की सारी दौलत भी लूट ली, है ना, वो तो आज हिंदू जो है वो ज्यादा इसके चैंपियन है कि इंडिया जो था वो कितना बड़ा जो है वो बेहतरीन क्या इकोनॉमी थी, और ब्रिटिश के जाने के बाद जो है ना उसकी क्या असर हो गया, दौलत भी सारी लूट ली, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी जो है वो लूट लिया, अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंपोर्ट कर दिया, वो हमारा तो सारा का सारा लूट के ले गए, राइट।
और जो है वो जो उलमाए कराम थे उनको जो है वो 14,000 उलमाए कराम को दरख्तों के ऊपर फांसी दे करके मारा, और जो है वो टोपों से बांध बांध करके उड़ाया, राइट? क्या इस हिस्ट्री से कोई इनकार कर सकता है? इसकी तो तस्वीरें मौजूद हैं, बुक्स के अलावा जो इनकी अपनी लिखी हुई बुक्स हैं उनके अंदर भी मौजूद है, हमारे उलमा की लिखी हुई बुक्स के अंदर मौजूद है, हत्ता की तस्वीरें भी मौजूद हैं तोपों से बांध बांध करके उड़ाने की और जगह जगह फांसी दिए जाने की, राइट? तो ये सब भी जिन्होंने आकर के किया, लेकिन जो तालीमी निजाम उन्होंने दिया वो हमारे फायदे का था, वो हमें अच्छा मुसलमान बनाएगा, वो हमें अच्छा हिंदुस्तानी बनाएगा, वो हमें अच्छा पाकिस्तानी बनाएगा। अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट है ये, समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे पास। ठीक है भाई, पहले आपने नहीं सोचा था इस बात को, अब तो बात को समझ जाए ना, और अब जो समझ गए हैं अगर, तो फिर इसके मुताबिक कुछ कुछ हिलजुल करने की जरूरत नहीं है कुछ, या जो गलतियां हो गई बस उसी को चलाते रहना है, वैसे ही आगे भी चलते जाएगी। ठीक है, दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।